एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम 20वीं सदी के एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका काम बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन नाम शायद उतना आम नहीं है। मॉरिट्ज श्लिक।
बिल्कुल, फ्रेडरिक अल्बर्ट मॉरिट्ज श्लिक, 1882 से 1936 तक। देखिए, वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे।
हाँ,
वो वियना सर्कल, मतलब वियना सर्कल, उसके संस्थापक थे, उसकी बौद्धिक धुरी थे। एक ऐसा समूह जिसने दर्शन शास्त्र को, आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया।
हाँ, मतलब दर्शन को एक ठोस वैज्ञानिक आधार देना चाहते थे वो।
बिल्कुल,
उस दौर के लिहाज से तो ये बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि तब दर्शन ज्यादातर अमूर्त ही समझा जाता था, है ना, थोड़ी अटकलबाजी जैसा।
सही कहा। और जैसा आपने कहा, उनकी कहानी का अंत वो दुखद भी है और शायद उस समय के माहौल का प्रतीक भी। उस तर बात करेंगे आगे चलकर।
जरूर, तो पहले थोड़ा उस दौर को समझें। श्लिक का समय काफी उथल पुथल वाला था।
हाँ, बहुत ज्यादा। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत है। एक तरफ तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब विज्ञान में क्रांतियां हो रही थीं
जो हमारी समझ को बिल्कुल जड़ से हिला रही थीं।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ पहला विश्व युद्ध, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का पतन, यूरोप में तानाशाही ताकतों का उदय, फासीवाद।
और वियना शहर, जहां श्लिक ने अपना ज्यादातर काम किया, वो इन सब का केंद्र था। मतलब एक तरफ कला, संगीत, बौद्धिकता।
हाँ, एक जगमगाता शहर।
और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और वो चरमपंथी विचारधाराएं, खासकर यहूदी विरोधी माहौल।
बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में जाहिर है, विज्ञान की सफलताएं देखकर वैज्ञानिक पद्धति पर भरोसा बढ़ रहा था। और जो सदियों पुरानी तत्व मीमांसा थी, मेटाफिजिक्स जिसे कहते हैं, मतलब वास्तविकता की प्रकृति पर बिना किसी प्रमाण के अटकलें लगाना, उस पर संदेह गहरा रहा था।
अच्छा,
श्लिक खुद भी अर्नस्ट माख जैसे भौतिक शास्त्री और दार्शनिक के अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म
से प्रभावित थे।
मतलब ज्ञान का आधार सिर्फ अनुभव है।
हाँ, वही।
और साथ ही बर्ट्रेंड रसेल जैसे विचारकों के लॉजिकल एनालिसिस से भी, भाषा की स्पष्टता पर जोर।
और उनके आसपास में लुडविग विटगेंस्टीन, रुडोल्फ कार्नाव जैसे बड़े नाम इकट्ठा हुए।
हाँ, जो बाद में वियना सर्कल के सदस्य बने और जिन्होंने मिलकर दर्शन की दिशा ही बदल दी एक तरह से।
श्लिक की अपनी पृष्ठभूमि भी तो दिलचस्प है। वो बर्लिन के एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन पढ़ाई पहले भौतिकी में की थी।
हाँ, ये बात है, शुरुआत दर्शन से नहीं हुई। भौतिकी पढ़ी, और वो भी किसके अंडर? मैक्स प्लैंक।
ओहो, मैक्स प्लैंक।
हाँ, 1904 में डॉक्टरेट ली। और उनका शोध किस पर था? प्रकाश के परावर्तन पर, एकदम ठोस वैज्ञानिक विषय।
तो ये जो वैज्ञानिक ट्रेनिंग थी, यही उनके दर्शन की पहचान बनी फिर। विज्ञान की सटीकता, प्रमाण पर जोर।
बिल्कुल, अनुभव पर आधारित होना, इन बातों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। और धीरे धीरे उनका रुझान भौतिकी से हटकर विज्ञान के दार्शनिक सवालों की ओर मुड़ गया।
कि विज्ञान हमें ज्ञान और दुनिया के बारे में असल में सिखाता क्या है।
सही।
और यहीं से उनके सबसे बड़े योगदान की नींव पड़ी, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद।
हाँ, वियना सर्कल इसी विचार का केंद्र था
और श्लिक उसके मुख्य प्रणेता थे।
चलिए, इस लॉजिकल पॉजिटिविज्म को थोड़ा और खोलते हैं। इसका मूल विचार क्या था, मतलब आसान शब्दों में?
देखिए, इसका जो केंद्रीय सिद्धांत था, वो था सत्यापन का सिद्धांत, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल।
सत्यापन मतलब वेरीफाई करना।
हाँ, बहुत सरल शब्दों में कहें तो, कोई भी वाक्य या कथन तभी अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, जब या तो वो परिभाषा से ही सच हो, जैसे गणित में होता है, दो और दो चार होते हैं।
ठीक है, ये तो लॉजिक हुआ। या फिर उसे अनुभव से, हमारी इंद्रियों द्वारा जांचा जा सके, मतलब उसकी पुष्टि की जा सके, वेरीफाई किया जा सके, या उसका खंडन किया जा सके, फॉल्सिफाई किया जा सके।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बात को हम अनुभव से जांच ही नहीं सकते, तो वो
सिर्फ झूठी नहीं है, वो निरर्थक है, मीनिंगलेस, बेमानी।
अरे,
सोचिए जरा, इस सिद्धांत के हिसाब से ईश्वर प्रेम है, आत्मा अमर है, या मान लीजिए चोरी करना बुरा है, ये वाक्य
जिन्हें हम किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते।
बिल्कुल। तो ये तकनीकी रूप से अर्थहीन थे। श्लिक और वियना सर्कल ने इन्हें कहा छद्म प्रस्ताव, स्यूडो प्रोपोजिशंस।
छद्म प्रस्ताव मतलब लगते सार्थक हैं पर हैं नहीं।
हाँ, उनमें कोई तथ्यात्मक या संज्ञानात्मक सामग्री नहीं है, अब सोचिए, ये उस समय के पारंपरिक दर्शन, धर्म, नैतिकता, उन सब पर कितना बड़ा हमला था।
वाकई ये तो जैसे कई पुराने खम्भों को गिराने जैसा था।
और इसी से जुड़ा हुआ उनका वो विज्ञान की एकता वाला विचार था, यूनिटी ऑफ साइंस। हाँ, वो मानते थे कि सारा सच्चा ज्ञान, चाहे वो भौतिकी हो, जीव विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, सब एक ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और सिद्धांत रूप में ये सब मिलकर एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं।
और इसमें भौतिकी सबसे बुनियादी?
हाँ, उसे सबसे फंडामेंटल माना गया। और गणित और तर्क, उन्हें वो दुनिया के बारे में कोई खोज नहीं मानते थे।
तो फिर क्या मानते थे?
उन्हें वो अनुभव को समझने और व्यवस्थित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए पारंपरिक नियम मानते थे, कन्वेंशनलिज्म। जैसे भाषा के व्याकरण के नियम होते ना।
अच्छा, जैसे नियम हमने बना लिए चीजों को समझने के लिए।
बिल्कुल। और फिर विटकिंस्टाइन का भी उन पर काफी प्रभाव पड़ा।
हाँ, विटकिंस्टाइन का।
तो उन्होंने कहा कि दर्शन का काम दुनिया के बारे में नए सिद्धांत गढ़ना नहीं है, दर्शन असल में एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी।
हाँ, गतिविधि। किस तरह की गतिविधि?
जिसका काम है भाषा को स्पष्ट करना। मतलब दर्शन एक तरह से विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की भाषा का लॉजिकल एनालिसिस करता है, ताकि गलत फहमियां दूर हों, निरर्थक बातें हटें।
उनकी एक किताब भी थी शायद इसी पर, द टर्निंग पॉइंट इन फिलॉसफी।
हाँ, 1930 में वो इसी विचार को सामने रखती है। एक तरह से वियना सर्कल का घोषणा पत्र ही बन गई वो।
इसीलिए वो कांट के सिंथेटिक ए प्रायोरी ज्ञान के खिलाफ थे।
बिल्कुल सख्त खिलाफ। मतलब ऐसा ज्ञान जो अनुभव से पहले सिर्फ तर्क से मिले और दुनिया के बारे में कुछ नया भी बताए, श्लेक के लिए ये हो ही नहीं सकता था।
क्योंकि सारा सार्थक ज्ञान अनुभव से ही आता है
उनके लिए। हाँ, और इसी तर्क से वो हेगेल जैसे दार्शनिकों की जो जटिल तत्वमीमांसा थी, उसे वो भाषा का दुरुपयोग मानते थे, निरर्थक। उनके ज्ञान के सिद्धांत पर सबसे व्यवस्थित विचार मिलते हैं उनकी किताब जनरल थ्योरी ऑफ नॉलेज में।
उन्होंने नैतिकता, एथिक्स पर भी लिखा। प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स में क्या नजरिया था उनका? क्या वो भी निरर्थक थी?
देखिए, पारंपरिक नैतिकता जो आदेश देती है कि ये करो वो मत करो, उसके बजाय श्लिक ने नैतिकता को एक वर्णनात्मक विज्ञान की तरह देखा, डिस्क्रिप्टिव साइंस।
वर्णनात्मक मतलब वर्णन करने वाला।
हाँ, उनका मानना था कि नैतिकता का काम बस ये अध्ययन करना है कि कौन से इंसानी व्यवहार या आचरण असल में खुशी और संतुष्टि की तरफ ले जाते हैं।
अच्छा, तो ये तो फिर मनोविज्ञान या समाजशास्त्र जैसा हो गया।
बिल्कुल, उसकी एक शाखा बन जाती है जो तथ्यों का अध्ययन करती है, आदेश नहीं देती।
ये तो बहुत अलग नजरिया है नैतिकता का। तो श्लिक और वियना सर्कल का दर्शन, हाँ, उसकी आलोचना हुई, लेकिन विरासत क्या रही उसकी?
विरासत तो बहुत गहरी है। देखिए, वो जो सत्यापन सिद्धांत था, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, उसमें अपनी दिक्कतें थीं और उसे बाद में बदला गया या छोड़ भी दिया गया।
हाँ, उसके आएंगे अभी।
लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जो मूल मूल्य थे, मतलब तार्किक स्पष्टता, भाषा की सटीकता, दावों के लिए अनुभवजन्य प्रमाण मांगना, इन चीज़ों ने 20वीं सदी के विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी को बहुत गहराई से प्रभावित किया।
एनालिटिक फिलॉसफी
जो आज भी काफी प्रभावशाली है, खासकर अंग्रेजी भाषी दुनिया में।
हाँ, बिल्कुल। और ये वो धारा है जो समस्याओं को तर्क और भाषा के विश्लेषण से हल करने पर जोर देती है। तो श्लिक का असर वहां दिखता है।
और ये भी एक अजीब बात है कि नाजीवाद के खतरे की वजह से वियना सर्कल के कई लोगों को यूरोप छोड़ना पड़ा।
हाँ, तो ये विचार अनजाने में अमेरिका और ब्रिटेन में फैल गए।
तो एक तरह से उनका पलायन इन विचारों के फैलने का कारण बन गया।
बिल्कुल। और कई लोग श्लिक को आज भी तर्क और विवेक के लिए शहीद मानते हैं। नैतिकता पर उनके काम ने बाद में मेटा एथिक्स को भी प्रभावित किया।
मेटा एथिक्स? हाँ, मेटा एथिक्स नैतिकता के बारे में आदेश नहीं देता, बल्कि वो नैतिक भाषा का ही विश्लेषण करता है। जैसे जब हम कहते हैं ये अच्छा है या ये बुरा है, तो इसका असल में मतलब क्या है?
अच्छा, मतलब भाषा का विश्लेषण।
हाँ, इसी से फिर इमोटिविज्म जैसे विचार निकले, जो मानते हैं कि ये गलत है कहना, कोई तथ्य बताना नहीं है, बल्कि अपनी नकारात्मक भावना व्यक्त करना है।
ये दिलचस्प है। उनके कुछ कथन भी काफी मशहूर हैं जो उनके विचारों को दिखाते हैं, जैसे किसी प्रस्ताव का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है।
हाँ, ये तो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल का सार ही है। मतलब किसी बात का अर्थ समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसे जांचेंगे कैसे।
या फिर दर्शन सिद्धांतों की एक प्रणाली नहीं है, यह एक गतिविधि है।
बिल्कुल, ये दर्शन की भूमिका पर उनका क्रांतिकारी विचार।
और एक और, अनुभव के मार्ग को छोड़कर वास्तविकता को समझने का कोई रास्ता नहीं है, ये उनके अनुभववाद पर जोर देता है।
हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, आलोचना भी जबरदस्त हुई।
हाँ, सबसे बड़ी आलोचना तो शायद उसी वेरिफिकेशन प्रिंसिपल की थी।
बिल्कुल, आलोचकों ने सीधा सवाल पूछा, भाई ये जो आपका सिद्धांत है वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, इसे खुद कैसे वेरीफाई करोगे?
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
क्या इसे अनुभव से जांच सकते हो? नहीं। क्या ये कोई तार्किक सत्य है, परिभाषा से सच? नहीं। तो क्या ये सिद्धांत खुद ही अपने मापदंड के हिसाब से निरर्थक, मीनिंगलेस नहीं है?
ये तो अपने ही जाल में फंसने जैसा हो गया।
इसका सामना कैसे किया फिर वियना सर्कल ने?
देखिए, उन्होंने इसे माना और सिद्धांत को थोड़ा कमजोर करने या बदलने की कोशिश की, जैसे पुष्टि कॉन्फर्मेशन की बात की, ना कि पूर्ण सत्यापन वेरिफिकेशन की, लेकिन ये समस्या बनी रही।
और एक और आलोचना थी शायद विज्ञान के नियमों को लेकर।
हाँ, वो भी बड़ी थी। ये सिद्धांत विज्ञान के सामान्य नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण हर जगह लागू होता है, इनको भी निरर्थक बना देता है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मांड के हर कोने में जाकर इसे पूरी तरह से तो कभी वेरीफाई कर नहीं सकते। सही बात है। और बाद में WVO क्विन जैसे दार्शनिक आए।
हाँ, क्विन, उन्होंने श्लिक और पॉजिटिविस्ट के उस स्पष्ट विभाजन पर सवाल उठाया, जो वो विश्लेषणात्मक सत्यों एनालिटिक ट्रूथ्स जो सिर्फ परिभाषा से सच होते हैं, जैसे सभी कुंवारे अविवाहित हैं, और संश्लिष्ट सत्यों सिंथेटिक ट्रूथ्स जो अनुभव से सच होते हैं, जैसे बिल्ली चटाई पर है, के बीच करते थे।
क्विन ने क्या कहा?
क्विन ने तर्क दिया कि ये भेद इतना साफ है ही नहीं। हमारे अनुभव हमारी परिभाषाओं को भी बदल सकते हैं, और हमारी परिभाषाएं हमारे अनुभव को समझने के तरीके को, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है ज्यादा।
और एक आरोप उन पर वैज्ञानिकता का भी लगा, साइंटिज्म।
हाँ बिल्कुल, यानी विज्ञान को ही ज्ञान का एकमात्र या सबसे ऊंचा रूप मान लेना, और कला नैतिकता धर्म जैसे इंसान के अनुभव के जो दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनको काम आंकना या कहना कि उनमें कोई संज्ञानात्मक मूल्य नहीं है, कोई ज्ञान नहीं मिलता उनसे।
आलोचकों का कहना था कि दुनिया को समझने के और भी तरीके हैं, सिर्फ विज्ञान ही नहीं।
सही। और फिर अंत में उनकी हत्या का वो दुखद और विवादास्पद किस्सा।
हाँ, 1936 में
वियना विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर ही
उनके एक पुराने छात्र योहान नीलबॉक ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब हत्यारे के इरादे क्या थे, वो थोड़ा जटिल मामला है। कुछ व्यक्तिगत रंजिश थी, मानसिक अस्थिरता की भी बात कही जाती है।
लेकिन विवाद इस बात पर हुआ कि बाद में क्या हुआ।
हाँ, जिस तरह बाद में नाजी समर्थक प्रेस ने हत्यारे को हीरो जैसा बना दिया, उसे सजा में भी काफी छूट मिल गई, ये कहकर कि उसने एक यहूदी समर्थक दार्शनिक को खत्म किया।
जबकि श्लिक प्रोटेस्टेंट थे, यहूदी नहीं।
हाँ, पर वो यहूदियों और उदारवादियों के करीब माने जाते थे। तो ये घटना उस समय के बौद्धिक विरोधी माहौल और श्लिक के तर्कसंगत मानवतावादी दर्शन के प्रति जो बढ़ती नफरत थी, उसे साफ दिखाती है।
उनके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं, जैसे वो बहस में काफी शांत रहते थे। हाँ, उन्हें जेंटलमैन कंदीना कहते थे। वियना सर्कल में बहसें बहुत तीखी होती थीं। कारनाप, न्यूरथ, विटकिनस्टाइन सब बड़े दिमाग थे और अपनी बातों पर अड़ते थे। लेकिन श्लिक अपनी शांत और सुरुचिपूर्ण शैली से चर्चा को भटकने नहीं देते थे, उसे सार्थक बनाए रखते थे। वो समूह के कुछ और सदस्यों की तरह हठधर्मी नहीं थे, असहमत विचारकों से भी दोस्ती रखते थे, संवाद करते थे।
शायद वो उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का असर था, खुले दिमाग वाला रवैया।
हो सकता है, जहाँ नए प्रमाण के आधार पर विचार बदलना बुरा नहीं माना जाता।
और वो पर्वतारोही भी थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे।
हाँ, कुशल पर्वतारोही थे, और कभी कभी दार्शनिक स्पष्टता की तुलना पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो सावधानी और नजर की स्पष्टता चाहिए उससे करते थे।
ये दिलचस्प है। एक और दुखद बात यह है कि उन्हें अमेरिका में रहने का मौका मिला था।
हाँ, 1930 के दशक में जब वो अमेरिका में पढ़ा रहे थे, बर्कले यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्थायी पद ऑफर किया था। अगर वो वहीं रुक जाते
तो शायद बच जाते।
शायद। लेकिन ऑस्ट्रिया में खतरे बढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने वियना लौटने का फैसला किया, अपने छात्रों और सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य महसूस करते हुए। ये फैसला अंत में उनके जीवन पर भारी पड़ा।
श्लिक का जीवन और काम वाकई आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।
निश्चित रूप से। देखिए, भले ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म अपने उस शुरुआती कठोर रूप में टिक नहीं पाया, लेकिन भाषा की स्पष्टता पर उनका जोर, अर्थ पर उनका जोर, दावों के लिए प्रमाण मांगने की उनकी जो लगन थी,
हाँ,
वो आज के इस फेक न्यूज, दुष्प्रचार और सूचनाओं के अंबार के युग में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है।
बिल्कुल। आज जब हम लगातार दावों, बयानों, सूचनाओं की बौछार झेल रहे हैं, तब ये सवाल कितना जरूरी हो जाता है कि हम उनके पीछे के अर्थ, इरादे और प्रमाण को कैसे परखें?
सही।
हम कैसे तय करें कि क्या वास्तव में सार्थक है और क्या सिर्फ शोर है? क्या श्लिक का दर्शन अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद हमें इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ सोचने की दिशा दे सकता है? ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। माना क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।